नमस्कार भारत, आज है 24 फरवरी दिन शुक्रवार और मैं हूं अपूर्व कृष्ण। मुंबई नगर पालिका के नतीजों से भाजपा का हौसला बुलंद, शिवसेना का मन खट्टा, सत्ताधारी गठबंधन के लिए कहीं ये खतरे की घंटी तो नहीं?
मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई असर पड़ेगा, क्योंकि सरकार ये अपना 5 साल का कार्यकाल पूरी करेंगी। सरकार
इराक के मोसुल शहर के एयरपोर्ट से चरमपंथियों को बाहर किया सेना ने, और मुलाकात ऐसी लड़कियों से जिन्हें लगता है होली से डर।
जा शादी जबरदस्ती कर देता हम मर जाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। हाँ, हमको बहुत डर लगता है, अभी से ही हमको बहुत डर लगता है।
होगी रिपोर्ट INS विराट पर जो होने जा रहा है रिटायर, और होगी वॉशिंगटन डायरी। पर पहले BBC समाचार।
बीबीसी समाचार तृप्ति श्रीवास्तव से। बृहन मुंबई नगर पालिका की 227 सीटों के लिए हुए चुनाव में शिवसेना को 84, बीजेपी को 82 सीटों पर जीत मिली। BMC चुनावों में कांग्रेस को नंबर 3 की स्थिति पर संतोष करना पड़ा। पार्टी के खाते में 31 सीटें आईं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 9 तो राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को सिर्फ 7 सीटों पर संतोष करना पड़ा। मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष संजय निरुपम ने इस हार के बाद इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस आलाकमान ने उनकी जगह भाई जगताप को मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष भी बना दिया। मेक्सिको सिटी में मेक्सिको के विदेश मंत्री लुइस विदेगारे ने अमरीकी विदेश मंत्री रैक्स टिलरसन और होमलैंड सिक्योरिटी के प्रमुख जॉन कैली से बैठक के बाद अमरीका में मैक्सिकन नागरिकों के मानवाधिकारों के उल्लंघन के बारे में चिंता व्यक्त की। विदेगारे ने कहा कि मेक्सिको ने अमरीका का आप्रवास पर हालिया प्रस्ताव देखा है जो बेहद हानिकारक और चिंता का विषय है। अमरीकी विदेश मंत्री ने कहा कि दो मजबूत संप्रभु देशों में समय समय पर मतभेद होता। जॉन कैरी ने मेक्सिको को भरोसा दिया कि आप्रवासियों को हटाने के लिए अमरीकी सेना का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। BBC से बात करते हुए मेक्सिको के पूर्व राष्ट्रपति विंसेंट फॉक्स ने कहा कि ट्रंप प्रशासन ने मेक्सिको को लेकर अपने सुर बदल लिए हैं।
It's incredible how they change from one day to the other. It's incredible the language.
यह अविश्वसनीय है, वो हर दूसरे दिन कैसे बदल जाते हैं। ये और भी हैरानी की बात है कि अपने भाषणों और बयानों में आक्रामक और हिंसक लगने वाले ट्रंप के ये लोग यहाँ भेड़ों की तरह आए। ट्रंप ने पहले बर्बाद किया, क्योंकि ट्रंप के आने से पहले अमेरिका और मेक्सिको के रिश्ते बहुत अच्छे थे, वो बेहद अच्छे रिश्ते ट्रंप ने ख़राब कर दिए। अब वो मेक्सिको और हमारी सरकार का रुख देख रहे हैं, पीछे लौट रहे हैं। अब लगता है कि वो मेक्सिको के अच्छे दोस्त बनना चाहते हैं। मुझे नहीं पता कौन ऐसे राष्ट्रपति पर भरोसा कर सकता है और कौन उनकी टीम पर भरोसा कर सकता है। ये थे विंसेंट फॉक्स के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। और मलेशिया पुलिस ने कहा है कि उन्होंने उस पदार्थ की पहचान कर ली है जिससे उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन के सौतेले भाई किम जोंग नम की हत्या की गई थी। उन्होंने इसका नाम VX नर्व एजेंट बताया है, जिसका इस्तेमाल केवल केमिकल हमलों में होता है। मलेशिया ने पहली बार किम के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की जानकारी सामने रखी है। किम जोंग नम की पिछले हफ्ते कुआलालंपुर हवाई अड्डे पर एक हमले में मौत हो गई थी। सीरिया के पर्यवेक्षक और विद्रोहियों के सूत्रों से पता चला है कि देश के उत्तर पश्चिम इलाके में एक सामूहिक कब्र मिली है जिसमें करीब 130 लड़ाकों के शव हैं। मानवाधिकार के लिए ब्रिटेन स्थित सीरियन ऑब्जर्वेटरी का कहना है कि ये शव खान शिकान शहर के पास दो अलग अलग जगहों पर मिले। इनमें से कुछ लोगों की गोली मारकर हत्या की गई है और कुछ के सिर कटे हुए हैं। पर्यवेक्षकों का कहना है कि इन्हें जंद अल अक्सा गुट ने मारा है, जो कि इस्लामिक स्टेट के चरमपंथियों का करीबी माना जाता है। स्थानीय नेताओं का कहना है कि इन शवों में 3 स्थानीय पत्रकारों और 11 कमांडरों के शव भी शामिल हैं। पेरिस में एक अश्वेत युवक के बलात्कार के मामले को लेकर प्रदर्शन कर रहे स्कूली छात्रों से शहर के दर्जनों स्कूल के आसपास उन्होंने नाकाबंदी की। छात्रों ने घेराव किया, कई गाड़ियां और कचरे के डिब्बों में आग लगाई। इस मामले में पेरिस पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कथित पीड़ित को 3 हफ्ते पहले एक जगह से गिरफ्तार किया गया था और पुलिस अधिकारियों द्वारा यौन शोषण और हिंसा का शिकार होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। BBC समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल पर लाइव। मैं हूं अपूर्व कृष्ण। मुंबई महानगर पालिका के चुनाव पर इस बार तमाम राजनीतिक पंडितों की निगाहें टिकी थीं, क्योंकि इससे उपजी लहरें महाराष्ट्र और शायद देश की सियासत पर असर छोड़ सकती हैं। चुनाव में पुरानी सहयोगी भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना अलग अलग लड़ी और दोनों ही को लगभग बराबर सीटें मिली हैं। बीजेपी इससे उत्साहित है, शिवसेना में मूड थोड़ा उल्टा है। तो कहीं इसका असर देवेंद्र फडणवीस की भाजपा शिवसेना गठबंधन सरकार पर तो नहीं पड़ेगा? महाराष्ट्र में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राव साहब पाटिल दनवे से यही पूछा हमारे सहयोगी निखिल रंजन ने।
मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई असर पड़ेगा, क्योंकि सरकार ये अपना 5 साल का कार्यकाल पूरी करेंगी, सरकार मजबूत है और शिवसेना ने कोई हमारा सपोर्ट विड्रॉ नहीं किया है। खाली इस चुनाव में हमारी गठबंधन नहीं रहा, पहले भी कई बार ऐसा हुआ है। जब ठाणे डिस्ट्रिक्ट का विभाजन हुआ तो पालघर का चुनाव हम डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग चुनाव लड़े, इसके पहले जो नगर निगम के चुनाव थे वो भी हम अलग अलग लड़े, कल्याण डुमरी का चुनाव भी हम अलग अलग लड़े, तो इसका कोई सरकार पे असर नहीं हुआ और मुझे अभी भी लगता है इसका कोई भी सरकार पे असर नहीं होगा और इन्होंने सपोर्ट रिटर्न नहीं किया।
लेकिन बीएमसी में जो मेयर बनाने के लिए बहुमत की जरूरत है उसके लिए काफी सीटें कम हैं और न शिवसेना इस स्थिति में है और न ही बीजेपी इस स्थिति में है कि वो अकेले अपने दम पर वहां पर बहुमत हासिल कर सके। तो अब आगे की रणनीति क्या होगी?
ये तो आंकड़ों का खेल है। हमारे है 82 और उनके है 84, दो आंकड़े का फर्क है। कांग्रेस 32 है, एनसीपी है, राज ठाकरे का है मन से। तो भारतीय जनता पार्टी एक निर्णय करने की एक प्रक्रिया है। हमारा जो कोर ग्रुप होता है, मेरे अध्यक्षता में कोर ग्रुप की मीटिंग होती है, वो मीटिंग होगी और अगली रणनीति हम तय करेंगे।
कहीं कोई आपको आसार दिखे हैं कि दूसरे लोग आपके साथ आ सकते हैं?
आ सकते हैं अगर हम कोशिश करें तो, लेकिन जब तक कि हमारी पार्टी मीटिंग नहीं होगी हम अभी तक किसी के संपर्क में नहीं रहेंगे, लेकिन बम्बई के कुछ इंडिपेंडेंट हमारे संपर्क में है।
क्या आप शिवसेना के अगले कदम का इंतजार कर रहे हैं?
नहीं, आज के तारीख में तो हम कोई नहीं कर रहे हैं, लेकिन सब आंकड़े फाइनल होने के बाद स्टेट के क्या हो सकता है इसकी चर्चा हम पार्टी मीटिंग में करेंगे।
तो क्या अब आगे के चुनाव में भी बीजेपी अकेले उतरने के बारे में सोचेगी, विधानसभा या लोकसभा?
ये तो तय है कि अगले विधानसभा में तो हो ही नहीं सकता हमारा गठबंधन, क्योंकि हमारे 130 है, उनके 62 है। हम बोलेंगे 123 पे आप बात मत करो, वो बोलेंगे 62 पे आप बात मत करो। अगर से वो मानते हैं कि हम 62 के बाद चर्चा करेंगे तो ठीक है, पर ये हो नहीं सकता। लोकसभा की बात तो अभी नहीं कर सकते हम, वो तो केंद्र से निर्णय होगा जो भी है।
पूरी इस जो प्रक्रिया हुई है उसे क्या लगता है कि बीजेपी और शिवसेना अब पूरी तरह से अलग हो जाएंगे?
मुझे लगता है आज के तारीख में पूरी तरह से अलग है।
ये थे महाराष्ट्र में बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष राव साहब पाटिल दनवे। उधर उत्तर प्रदेश में भी चुनाव चल रहे हैं और कल चौथे दौर का मतदान संपन्न हो गया है। 3 और दौर का चुनाव बाकी है, प्रचार जोर शोर से चल रहा है। खबरें पढ़ने के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर। फिलहाल एक और खबर। INS विराट दुनिया का सबसे पुराना विमानवाहक जहाज है जो 30 साल की सेवा के बाद 6 मार्च को रिटायर हो रहा है। क्या होगा विराट का इसके बाद? कहीं इसे भी तो INS विक्रांत की तरह कबाड़ी को नहीं बेच दिया जाएगा? विनीत खरे की विशेष रिपोर्ट।
INS विराट को नौसेना में ग्रैंड ओल्ड लेडी भी कहा जाता था। ये शक्ति का प्रतीक था जो कहीं भी जाकर समुद्र पर धाक जमा सकता था। कोशिश हो रही है कि आंध्र प्रदेश और केंद्र सरकार के बीच कोई समझौता हो जाए और INS विराट को एक सैन्य संग्रहालय बना दिया जाए। माना जाता है कि ऐसा करने में करीब 1,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे, लेकिन ये धन कौन खर्च करेगा इस पर विवाद है। INS विराट ने 30 साल भारतीय नौसेना की सेवा की और 27 साल ब्रिटेन की रॉयल नेवी के साथ गुजारे। 1987 में भारत ने इसे ब्रिटेन से खरीदा था, उस वक्त इसका ब्रितानी नाम HMS हरमीज था। 1987 में जब जहाज मुंबई आया तो एडमिरल अरुण प्रकाश एक छोटी फ्रिगेट को कमांड कर रहे थे।
हमें बोला गया कि सब जाके इसको वेलकम करो, तो बहुत ही तूफानी दिन था, मानसून का दिन था ये 1987 में। तो हम दूर गए, बम्बे के बाहर लगातार बारिश हो रही थी, तेज हवा चल रही थी, तो दूर से हमने देखा बहुत ही शानदार दृश्य INS विराट का।
ब्रितानी रॉयल नेवी के साथ HMS हरमीज ने फॉकलैंड युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारतीय नौसेना में शामिल होने के बाद INS विराट ने जुलाई 1989 में ऑपरेशन जुपिटर में पहली बार श्रीलंका में शांति स्थापना के लिए ऑपरेशन में हिस्सा लिया। वर्ष 2013 में भारतीय संसद पर हमले के बाद ऑपरेशन पराक्रम और बाद में पाकिस्तान के साथ 1999 के कारगिल युद्ध में भी विराट की भूमिका थी। अगस्त 1990 से दिसंबर 1991 तक रिटायर्ड एडमिरल अरुण प्रकाश INS विराट के कमांडिंग ऑफिसर थे। जहाज के बारे में वो बताते हैं।
खाने बनाने के लिए जो हमारे जवान लोग, खाना बहुत इम्पोर्टेंट चीज होती है, बड़े बड़े गैलीज थे तो रहने सहने का बंदोबस्त अच्छा था और मेहनत बहुत करनी पड़ती है लोगों को जो भी जहाज पे काम करता है, तो शाम को थोड़ा आराम करने का चांस मिले, नहाने। आपको मालूम होगा शिपमैन फ्रेश वाटर यानी कि वैसे तो समुद्री पानी से तो ना पी सकते हैं ना नहा सकते हैं, तो जहाज में अपने आप वो फ्रेश वाटर बनाना पड़ता है, मीठा पानी पीने के काम आता है। तो कई जहाजों में पानी की कमी होती है तो बहुत दिक्कत होती है, तो मेहनत करके शाम को या रात को नीचे आओ तो एक अच्छा सा शावर लेके आराम करो।
एडमिरल प्रकाश INS विराट के भविष्य को लेकर चिंतित हैं।
सैनानी की जो कंट्रीब्यूशन है इंडिपेंडेंस के बाद उसका कोई किसी को कोई वैल्यू नहीं है, नाज नहीं है। हम हमारी जो फौज देख लीजिए 1947 से लेके आज तक कंटिन्यूअसली डिप्लॉयड है, लड़ाई लड़ रहे हैं। आज तक ना म्यूजियम बना है ना वॉर मेमोरियल बना है, अंग्रेजों ने 3-4 वॉर मेमोरियल बना के छोड़ गए जवानों के नाम पे, लेकिन स्वतंत्र हिंदुस्तान ने एक म्यूजियम तक नहीं बनाया। श्रीलंका में म्यूजियम है हमारे जवानों का, बांग्लादेश में है वॉर मेमोरियल इंडियन जवान का, लेकिन इंडिया में इंडियन सोल्जर सेलर एयरमैन का एक म्यूजियम तक नहीं बनाया, वॉर मेमोरियल तक नहीं बनाया।
विक्रांत के लोहे का मोटरसाइकिल के लिए इस्तेमाल पर वो कहते हैं,
जब ये बात मेरे नजर में आई तो मुझे ऐसा लगा कि भाई एक तरफ से तो हम बिल्कुल उसको भूल गए थे, पर अगर किसी मोटरसाइकिल कंपनी में उसका लोहा खरीद के उसका कुछ और बना दे तो शायद उसका नाम और उसकी याददाश्त तो चलती रहेगी, इसमें कोई बुरी बात नहीं थी।
एडमिरल अरुण प्रकाश के मुताबिक INS विराट ने तटरक्षा के अलावा नौसेना की 2 पीढ़ियों के पायलटों, इंजीनियरों और तकनीकी विशेषज्ञों को बहुत कुछ सिखाया है और इसका हश्र विक्रांत के जैसा नहीं होना चाहिए। विनीत खरे, BBC दिल्ली।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 49, 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 5875, 7430, 9560, 11995 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज पर।
और अब एक नजर आज के अखबारों की सुर्खियों पर। तृप्ति श्रीवास्तव अखबारों के साथ स्टूडियो में है। तृप्ति
अपूर्व जी, सबसे पहले मैं बात करूंगी नागरिक उड्डयन सुरक्षा विभाग के उस आदेश की कि अब हवाई यात्रा के दौरान हैंड बैगेज पर स्टैंप नहीं लगाया जाएगा। ये खबर टाइम्स ऑफ इंडिया के पहले पन्ने पर है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद और कोचीन हवाई अड्डों पर तत्काल प्रभाव से हैंड बैगेज स्टैंपिंग की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। वहीं जनसत्ता ने पहले पन्ने पर मणिपुर की राजनीति में महिलाओं की स्थिति पर लेख छापा है जिसकी हेडिंग है, पुरुषों पर भारी लेकिन राजनीति में बेचारी। लिखता है कि मतदाताओं की संख्या के लिहाज से पुरुषों पर भारी पड़ने के बावजूद राजनीति में महिलाएं अब तक बेचारी साबित हो रही हैं और ये पूरी तस्वीर उन्होंने मणिपुर की महिलाओं की इस लेख में दिखाई है। हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा है कि राजधानी दिल्ली में भारी ट्रैफिक जाम से की जानकारी देने के लिए अधिकारी अब सड़कों के किनारे बड़े LED बोर्ड लगाने वाले हैं। ये बोर्ड जाम से निकलने की सटीक समय बताएंगे और वैकल्पिक रास्ते भी बताएंगे। फिलहाल ये सिस्टम दिल्ली की उन 50 जगहों पर लगाया जाएगा जहाँ सबसे अधिक ट्रैफिक जाम होता है। वहीं हिंदी अखबार हिंदुस्तान ने पहले पन्ने पर प्रमुखता से दिल्ली यूनिवर्सिटी रामजस कॉलेज में हुई हिंसा के बाद गुरुवार को जो छात्र सड़कों पर उतरे थे इस खबर को तरजीह दी है। और इस बीच मीडिया कर्मियों और छात्रों पर लाठीचार्ज मामले में 3 पुलिस वालों को निलंबित कर दिया गया है, ये भी इसमें लिखा गया है।
तृप्ति, धन्यवाद अखबारों की समीक्षा के लिए। और अब एक और खास रिपोर्ट। होली में अब लगभग एक पखवाड़े का वक्त रह गया है। होली रंगों का त्यौहार है मगर कुछ लड़कियां ऐसी हैं जिनके लिए ये त्यौहार खौफ लेकर आता है कि कहीं इस दौरान उनका जीवन बेरंग ना हो जाए। बिहार की राजधानी पटना से सटे दानापुर में होली से डरने वाली ये लड़कियां कौन हैं और क्या है उनका डर, बता रही हैं सीटू तिवारी।
जा शादी जबरदस्ती कर देता हम मर जाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। हाँ, हमको बहुत डर लगता है, अभी से ही हमको बहुत डर लगता है।
8वीं में पढ़ने वाली मुनचुन के चेहरे पर ये कहते हुए एक किशोरी की शर्म, शादी की उलझन, परिवार की गरीबी तैर गई। 14 साल की मुनचुन उन 150 महादलित बच्चियों में से एक हैं जो बिहार की राजधानी पटना से सटे दानापुर के प्रेरणा छात्रावास में रहती
है। हर बार हम काट देते हैं, मम्मी बोलते हैं कि नहीं, वो बोलते हैं ना लड़का वाला कि फोटो मांग रहा है लड़की का, तो मम्मी बोलते हैं कि चलो खिंचाने, हम बोलते हैं कि नहीं, हम जबरदस्ती करके नहीं खिंचाते हैं फोटो।
होली नजदीक आते ही इस हॉस्टल की फिजा में डर घुल जाता है। हर बार होली के मौके पर घर गई बच्चियों में से कम 3 बच्चियों की शादी हो जाती है। प्रेरणा छात्रावास की निदेशक सुधा वर्गीज बताती हैं,
होली में हम लोग छुट्टी देते हैं बच्चों को, लेकिन डर इस बात की है कि वही समय कई माँ बाप जो बिच्छी लो थोड़ा सा बड़ी हो गई है तो सोचने लगता है कि शादी हो। और पिछले साल भी मेरा 2-3 लड़कियां वापस नहीं आई, बोले कि वे लोग शादी कर रहे
हैं।
15 साल की पूनम मांझी 8वीं में पढ़ती हैं। बिहटा के खोरहर गांव की ये बच्ची साल 2013 में खूब चर्चा में आई थी। दरअसल पूनम ने संयुक्त राष्ट्र में बाल विवाह पर अपनी बात रखी थी। पूनम उस वक्त अपने परिवार और समाज की खुशी को कुछ यूं बयां करती हैं।
मेरे कारण से ही मेरे गांव के जो लड़की है कुछ आरा हॉस्टल में गई है और कुछ यहाँ पर है, तो हमको बहुत खुशी हुआ कि एक मतलब कि एक मसाल बन के वो उठे।
लेकिन हवाई जहाज से अमेरिका जाने वाली पूनम के सपनों के पंख कतरने की तैयारी उसके परिवार ने साल 2015 में कर ली। पूनम की शादी तय कर दी गई। पूनम बताती हैं कि ये होली का ही वक्त था जब परिवार की गरीबी की बात कहकर माँ ने शादी के लिए हामी भरवा ली थी।
मेरा अति फैमिली ना बहुत मतलब गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। मम्मी इतना गरीब है कि मतलब सोचने लगती हो कि आगे जाकर कितना महंगा सारा सामान हो जाएगा, इसलिए हमको हमसे शेयर की थी सारा बात, तो हम बोले कि ठीक है हम।
पूनम की शादी तो समय रहते रुक गई, लेकिन इस कश्मकश से इन महादलित बच्चियों का संघर्ष लगातार जारी रहता है। 14 साल की शांता जहानाबाद के धराउत गांव की हैं। वो बताती हैं कि होली में डर लगता है क्योंकि गांव में हर बार अपनी सहेलियों की शादी होते वो देखती हैं।
होली में घर जाते हैं तो लगता है डर। गांव की लड़कियां जो रहती है छोटी छोटी, उसकी भी शादी हो जाती है कम उम्र में ही, तो मैं भी सोचती हूँ कि शायद मेरी भी शादी कर दे मम्मी पापा।
बीते 3 दशक से भी ज्यादा समय से महादलितों खासकर अत्यंत पिछड़े मुसहर समुदाय के बीच काम कर रही सुधा वर्गीस कहती हैं कि ये समुदाय बहुत असुरक्षित महसूस करता है, इसलिए इनके बीच बाल विवाह को अलग और संवेदनशील नजरिए से देखना होगा।
इनका जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं, मान लीजिए एकाएक कोई कोलरा आ गया तो ये वो मर जाएगा, बाल बच्चे भी मरे, बहुत कुछ ऐसे होता है इन लोगों के।
बता दें बिहार की दलित आबादी 15% है। महादलित सबसे ज्यादा आर्थिक और शैक्षणिक तौर पर पिछड़ी जातियां हैं, जिसके चलते बाल विवाह की समस्या यहां गहरे में धंसी हुई है। अलग अलग अनुमानों के मुताबिक बिहार में 60% शादियां बाल विवाह होती हैं। महादलित बच्चियों के लिए होली अक्सर रंगों में सराबोर करने वाली नहीं बल्कि जीवन को बदरंग करने वाली ही साबित होती है। सीटू तिवारी, BBC, दानापुर।
खबर सच है अगर BBC पर है।
और अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। इराक का दूसरा बड़ा शहर है मोसल। उत्तरी इराक के शहर मोसल पर जून 2014 से खुद को इस्लामिक स्टेट कहने वाले चरमपंथियों ने कब्जा किया हुआ है। इराकी सेना ने शहर को उनके कब्जे से छुड़ाने के लिए पिछले 4-5 महीने से अभियान छेड़ा हुआ है। कल उन्होंने शहर के एयरपोर्ट पर कब्जा करने में कामयाबी पाई। BBC संवाददाताओं का भेजा ब्यौरा सुना रही हैं तृप्ति श्रीवास्तव।
इराकी सुरक्षा बलों ने मोसुल शहर के हवाई अड्डे पर नियंत्रण कर लिया है। इराक के दूसरे बड़े शहर को तथाकथित इस्लामिक स्टेट के कब्जे से छुड़ाने के इराकी सेना के अभियान के लिए इसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस अभियान में 4 घंटे लगे। एक इराकी सेना प्रवक्ता ने बताया कि IS चरमपंथी इसके बाद भी एयरपोर्ट पर दूर से मोर्टार दागे जा रहे थे। प्रवक्ता ने कहा कि जिहादी झड़प के बीच ही पास के एक सैनिक अड्डे में भी प्रवेश कर गए। एक सैनिक अहमद अल गनीमी ने पत्रकारों को बताया कि एयरपोर्ट की इमारत अब इराकी सेना के नियंत्रण में है। यह मोसुल एयरपोर्ट का मुख्य प्रवेश द्वार है और इसकी दाई तरफ रनवे है, पीछे की तरफ एयरपोर्ट हॉल है। तमाम अड़चनों के बावजूद इसे बहुत ही कम समय में आजाद करवा लिया गया। गुरुवार को मिली कामयाबी के बाद अब मोसुल के पूर्वी और दक्षिण पश्चिम के अधिकतर इलाकों पर सेना का नियंत्रण हो चुका है। शहर के पूर्वी हिस्से को पिछले सप्ताह कब्जे में लिया गया था। हवाई अड्डा शहर के पश्चिमी हिस्से में है जहां अभी भी चरमपंथियों का नियंत्रण है। एयरपोर्ट की मुख्य इमारत और हवाई पट्टी मलबे में तब्दील हो चुकी है। जिहादी अब पश्चिमी मोसुल के आबादी वाले इलाकों में चले गए हैं। संवाददाताओं का कहना है कि वहां लड़ाई और मुश्किल होगी। पश्चिमी मोसुल पूर्वी हिस्से के आकार में छोटा है, मगर वहां आबादी घनी है और ऐसे इलाके हैं जिन्हें IS समर्थक माना जाता है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने शहर में फंसे आम लोगों को लेकर चिंता जताई है। इराक में संयुक्त राष्ट्र के अभियान के समन्वय का काम कर रहे ब्रूनो गैडो ने बताया,
एक
मोटे अनुमान के मुताबिक पूरे शहर में करीब 400,000 लोग रह रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि क्या होगा अगर ISIS घनी आबादी वाले पुराने शहर के लोगों को मानव ढाल के तौर पर इस्तेमाल करता है, तो हमारी चिंता का सबसे बड़ा विषय यही है। चैरिटी संस्था सेव द चिल्ड्रन का अनुमान है कि मोसुल में 800,000 लोग फंसे हो सकते हैं। शहर और इसके आसपास से 150,000 से ज्यादा लोग अपने घरों से भाग चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र ने जनवरी में कहा था कि मोसुल में मारे गए लोगों में से लगभग आधे आम लोग थे। IS जिहादियों ने 2014 में इराक के उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों पर कब्जा करते हुए मोसुल को अपने नियंत्रण में ले लिया था।
मोसुल पर कब्जे के लिए जारी अभियान। और अमेरिका के कैंसस राज्य से खबर आ रही है कि वहां हिंसा की एक घटना में एक भारतीय इंजीनियर की मौत हो गई है। वाशिंगटन से BBC संवाददाता ब्रजेश उपाध्याय हमसे जुड़ चुके हैं। ब्रजेश, क्या है घटना?
अपूर्व, ये अमेरिका के कैंसस राज्य के एक रेस्तरां में बुधवार की शाम को ये घटना हुई। एक हमलावर ने 2 भारतीय समेत 3 लोगों पर गोली चलाई, जिसमें एक भारतीय युवक की मौत हो गई है। पुलिस के अनुसार हमलावर 51 साल के एडम पोरिंटन को कुछ ही घंटों के बाद पड़ोस के मिसूरी राज्य में गिरफ्तार कर लिया गया है। और स्थानीय मीडिया ने प्रत्यक्ष दर्शियों के हवाले से कहा है कि ये नस्लवादी हमला था और हमलावर ने गोली चलाने से पहले चिल्लाकर कहा, मेरे देश से बाहर निकलो। और अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि उसने दोनों भारतीयों को मध्य पूर्व मूल का यानी आप मुसलमान समझकर हमला किया, लेकिन पुलिस फिलहाल इस पर कुछ नहीं कह रही। स्थानीय पुलिस और FBI का कहना है कि वो हर एक पहलू की जांच कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये नहीं कह सकते कि ये नस्लवादी हमले का ही मामला है। पुलिस के अनुसार दोनों भारतीयों में से एक हैं 32 साल के श्रीनिवास कुचिवोतला, जिनके अस्पताल में मौत हो गई। वहीं हमले में घायल आलोक मदासानी, जो 32 साल के हैं, और इयन ग्रिलॉट, ये 24 के हैं और इनकी स्थिति स्थिर है। और ये दोनों भारतीय इंजीनियर जो GPS बनाने वाली कंपनी है गार्मिन, वहां काम करते थे। दोनों ने भारत में पढ़ाई की थी। और अब से कुछ देर पहले इयन ग्रिलॉट ने स्थानीय मीडिया को इंटरव्यू दिया है कि क्योंकि उन्हें एकदम हीरो की तरह पेश किया जा रहा है, उन्होंने कहा कि मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया है, क्योंकि खबर ये आ रही थी कि वो इन लोगों के बचाव में खड़े हुए थे, कोई भी इंसान ऐसा करता।
और उन्होंने ये भी फिर से बताएं 3 लोगों पे अटैक हुआ था और उसमें मारा गया है एक भारतीय
और एक भारतीय घायल है, और एक है जो जिनका नाम है इयन ग्रिलॉट। और ये बुधवार की शाम ओलेथ शहर की घटना है,
कैंसस राज्य में।
गार्मिन कंपनी जी और गार्मिन कंपनी ने एक शोक संदेश जारी किया है, साथ ही एक GoFundMe जो चंदा जुटाने की मुहिम होती है वो शुरू हुई है।
आप नजर रखें इस खबर पर, अभी ये खबर आई ही है, नजर रखें इस खबर पर, अगली सभाओं में आपसे और जानकारी लेंगे। धन्यवाद ब्रजेश। और अब ब्रजेश की ही वॉशिंगटन डायरी। डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में आ चुके हैं, मगर उनके काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। मीडिया को भला बुरा कहने वाले ट्रंप के विदेश मंत्रालय ने ब्रीफिंग में पत्रकारों को बुलाना ही बंद कर दिया है, तो किसी को समझ ही नहीं आ रहा कि अमरीकी विदेश नीति किस ओर जा रही है। इस असमंजस भरी हालत पर सुनिए ब्रजेश उपाध्याय की डायरी।
इन दिनों अमरीकी कूटनीति ट्विटर के खुले चौराहे पर सिर्फ 140 ठुमकों में अपने जलवे दिखा रही है। जिस दिन से राजा ट्रंप कुर्सी पर बैठे हैं, उसी दिन से विदेश विभाग ने अपनी रोजाना होने वाली प्रेस ब्रीफिंग बंद कर रखी है। सही भी है, क्या पता कि वो कुछ कहें और ट्रंप का ट्वीट कुछ और कहे। कोरिया हो या सीरिया, नेटो हो या चीन, ट्रंप की विदेश नीति किधर जाएगी ये किसी के पल्ले नहीं पड़ रही। भारत और पाकिस्तान में भी सुना है साहब लोग बाल नोच रहे हैं, तो मैंने सोचा थोड़ी सी आपकी मदद कर दूं। इतना तो बनता है ना बॉस। पहला, ट्रंप के फ्लोरिडा वाले मारा-लागो क्लब की मेंबरशिप फौरन ले लें। चुनाव जीतने से पहले मेंबरशिप की फीस थी $1,00,000, अब 2,00,000 की हो गई है। वहां ट्रंप हमेशा खुश रहते हैं, झप्पियां शप्पियां वाले मूड में। वहां अगर कोई शादी हो रही है तो पहुंचकर दूल्हा दुल्हन के साथ सेल्फी ले लेते हैं। मेंबरों से कहते हैं, अरे कल आना, यहां कई बड़े बड़े कैबिनेट पदों के उम्मीदवारों के इंटरव्यू ले रहा हूं, बड़ा मजा आएगा। तो बस मौका देखिए और F-16 हो या H-1B अर्जी डाल दीजिए, मूड में हुए तो वहीं काम हो जाएगा। अच्छा, खाने में आपको क्या पसंद है? अपनी पसंद घर पर रखकर आइए। ट्रंप की फेवरेट है ब्रेड में लगाकर बीफ का भुर्ता और थोड़ा सा अचार। अपने खास दोस्त गवर्नर क्रिस क्रिस्टी और कुछ लोगों के साथ बैठे, मेन्यू आया तो कहा, बाकी लोगों को जो लेना हो लें, मेरे और मेरे दोस्त के लिए तो बस मीट लोफ यानी बीफ और ब्रेड का सैंडविच ले आओ। क्या कहा? बीफ से परेशानी है? अरे हाँ, आपने तो बैन लगा रखा है। अरे सर, पाकिस्तान वाले साहब तो यहाँ नंबर बना लेंगे, साथ में निहारी चखवा दिया तो ट्रंप तो उनके मुरीद बन जाएंगे। देख लें, एक तरफ देश, दूसरी तरफ अब क्या कहूँ। तीसरी बात, ट्रंप साहब को अपना नाम बहुत अच्छा लगता है, यहाँ तक कि उनके क्लब में जो खाने की चीज़ें मिलती हैं ना, उनके भी नाम पर ट्रंप की मुहर है, ट्रंप मीट लोफ, थ्री लेयर ट्रंप चॉकलेट केक वगैरह वगैरह। तो आपको बस ये करना है कि एक दो सड़कों के नाम बदल दीजिए, ग्रैंड ट्रंक रोड को ग्रैंड ट्रंप रोड कर दीजिए। कौन सा शेरशाह सूरी मुकदमा करने आ रहे हैं? दिल्ली में मायावती जी की जो मूर्तियां हैं ना, उनमें से एक दो की जगह मेलानिया ट्रंप की मूर्ति लगवा दीजिए। लेकिन इसके लिए यूपी चुनाव के नतीजों तक रुक जाइएगा। किसी दूर दराज के रिश्तेदार के यहाँ नाती पोता पैदा हुआ हो तो उसका नाम ट्रंप रखवा दीजिए, ट्रंप त्रिवेदी, कितना अच्छा लगता है नहीं? और बेईमान पत्रकारों से कहिएगा कि बड़ी बड़ी सुर्खियों में छापें, एक पूरे गांव ने अपने बेटों के नाम ट्रंप और बेटियों के नाम मेलानिया और इवांका रखा। ये खबर देखकर तो ट्रंप अपने छोटे छोटे हाथों से आपको ऐसा जकड़ेंगे कि कभी छोड़ेंगे नहीं। चौथी बात, गोल्फ खेलना सीख लें। क्रिकेट का शौक तो है ही आप लोगों को, समझ लीजिएगा हॉकी स्टिक से क्रिकेट खेल रहे हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। हर वीकेंड को ट्रंप साहब गोल्फ खेलते मिलेंगे और कह चुके हैं कि मैं तो बस विदेशी नेताओं के साथ खेलता हूं, ओबामा तो वक्त जाया करते थे। अब आखिरी सलाह, उनके सामने अपनी गरीबी और बेचारगी वाला दुखड़ा मत रोइएगा, इस तरह के लोगों को वो लूजर्स कहते हैं। उनके सामने तो कुछ इस अंदाज में बात कीजिएगा, भाई ये पड़ोसी बहुत तंग कर रहा है, सीमा पार से आतंकवाद करवाता है, वो तो आपका लिहाज है वरना कब का ठोक देता। या फिर, अरे जनाब आप कहाँ सीरिया इराक में परेशान हो रहे हैं, हमारी फौज किस दिन काम आएगी, हमें कॉन्ट्रैक्ट दे दो, पूरा इलाका सपाट कर देंगे। यानी वो स्ट्रांग मैन वाली इमेज देनी है। बस एक बात जरूर याद रखिएगा, खुद को हमेशा नंबर दो की तरह ही पेश कीजिएगा, वरना सब किए कराए पर पानी फिर जाएगा। और हाँ, इन सब के बाद एक ट्विटर मंत्री जरूर बहाल कर लीजिएगा, ट्विटर की समझ आ गई तो विदेश मंत्री की भी जरूरत नहीं रहेगी। ब्रजेश उपाध्याय, बीबीसी न्यूज, वॉशिंगटन।
और अब खेल समाचार। इंदु पांडे सुना रही हैं पुणे में कल से शुरू हुए भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच का हाल।
भारतीय जमीन पर मेजबान गेंदबाजों का मुकाबला कितना मुश्किल है, ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को इसका अंदाजा पहले टेस्ट मैच के पहले ही दिन कल हो गया। उमेश यादव की अगुवाई में भारतीय गेंदबाजों ने पुणे टेस्ट के पहले दिन 256 रन खर्च किए और ऑस्ट्रेलिया के 9 बल्लेबाजों को पवेलियन लौटा दिया।
आप अगर कंटिन्यूसली एक एरिया में डालते रहोगे बॉलिंग, तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा बेटर होता, क्योंकि बैट्समैन को आप मिस्टेक करने का चांस दो, आप खुद ना करो। तो ऐसे विकेटों पे मैं ये कोशिश कर रहा था कि जितने कम से कम बाउंड्री वाली बॉल डालूंगा उतना मेरे लिए अच्छा होगा, क्योंकि मुझे पता था कि अगर एक भी अगर शॉट वो खेलने जाएंगे तो विकेट मिल सकता।
टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला करने वाली ऑस्ट्रेलिया टीम को डेविड वार्नर और मैथ्यू रेनशा की जोड़ी ने अच्छी शुरुआत दिलाई। ओपनर्स ने पहले विकेट के लिए 82 रन जोड़े। कैप्टन स्टीव स्मिथ समेत बाकी बल्लेबाज बड़ा स्कोर नहीं बना सके। क्रिकेट एक्सपर्ट प्रदीप मैगजीन का कहना है कि आज जब भारतीय क्रिकेट टीम मैदान में उतरेगी तो उसकी रणनीति कुछ इस तरह से होगी।
जितने कम रन ऑस्ट्रेलिया कर पाए उतना अच्छा है, जितनी जल्दी से विकेट ले, क्योंकि जितने भी एक्स्ट्रा रन बनते जाएंगे उतना हिंदुस्तान पे बोझ बढ़ता जाएगा। लेकिन हिंदुस्तान के फेवर में हमको एक बात करनी पड़ेगी कि वो घर पे खेल रहे हैं, उन्होंने जितने भी यहाँ टेस्ट मैच खेले हैं, कई टर्निंग ट्रैक्स पे भी खेले हैं, उनके बैट्समैन अच्छा खेले हैं, और ऑस्ट्रेलिया की स्पिन गेंदबाजी भी जैसे कि हिंदुस्तान की है वैसे है नहीं। तो ये सारे फैक्टर्स है जो इंडिया को कॉन्फिडेंस देगी,
और इसी कॉन्फिडेंस से भरी हुई है भारतीय क्रिकेट टीम। और भारतीय टीम को उसके घर में हराना थोड़ा सा मुश्किल है, खासकर अब जब विराट एंड टीम लगातार 19 मैचों से अजेय है। खेल समाचारों में बस इतना ही।
इससे पहले मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार। मलेशिया पुलिस ने कहा है कि उन्होंने उस पदार्थ की पहचान कर ली है जिससे उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन के सौतेले भाई किम जोंग नम की हत्या की गई थी। मेक्सिको ने अमेरिका के लिए कहा है कि अमेरिका में मैक्सिकन नागरिकों के मानवाधिकारों के उल्लंघन के बारे में हमें चिंता हो रही है, और ये चिंता उन्होंने विदेश मंत्री के सामने अपनी दिखाई भी। सीरिया के पर्यवेक्षक और विद्रोहियों के सूत्रों से पता चला है कि देश के उत्तर पश्चिम इलाके में एक सामूहिक कब्र मिली है जिसमें करीब 130 लड़ाकों के शव हैं। पेरिस में एक अश्वेत युवक के बलात्कार के मामले को लेकर प्रदर्शन कर रहे स्कूली छात्रों ने शहर के दर्जनों स्कूल के आसपास नाकाबंदी की। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। आपसे हमारी अगली मुलाकात शाम 7:30 बजे दिन भर में होंगी। तब तक आपके साथ है हमारी वेबसाइट मल्टीमीडिया वेबसाइट bbchindi.com। इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया दीपक चसरोटिया ने। अपूर्व कृष्ण को अब दीजिए अनुमति। नमस्कार।